हरे राम 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 हरे हरे। जय हो जय हो राधे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। जय श्री राधे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पुकारो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। जय जय श्री राधे। श्याम सब लोग बोलो गोपाल गोपाल। श्रील प्रभुपाद की, आशेश्वर महादेव की, नंदगांव धाम की, नंद महाराज की, यशोदा माई की, श्रील प्रभुपाद की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सो इस पवित्र आशेश्वर महादेव स्थान पर आप सबका स्वागत है। इस स्थान पर आपके भक्ति की कसौटी होगी, होगी कि नहीं होगी? अभी से हो रही है शुरू से लेकिन आप लोगों को मेरी भी कसौटी है, ध्यान रखना इस बात का क्योंकि बंदर आपका ध्यान विचलित करेंगे, आपको विचलित होने नहीं देना है। आप सबका ध्यान भगवान की कथा पे होना चाहिए। बंदर अपना काम करे, आप अपना काम करो, वेरी सिंपल। बंदर आपको नहीं देख रहे हैं, आप उनको देख रहे हैं। हरे कृष्णा। ये बंदर प्रभु रामचंद्र के बंदर हैं, उन्होंने प्रभु रामचंद्र को उनकी लीला में बहुत सहायता किया था, तो प्रभु रामचंद्र उनको अयोध्या ले गए थे पुष्पक विमान पर बैठकर। चलो थोड़ी कथा सुना देते राम जी की। तो जब प्रभु रामचंद्र विजयी हो गए तो जो कुबेर का चुराया हुआ पुष्पक विमान था ना, वो फिर प्रभु राम जी को जो मिला ना, जब जैसे ही रावण हार गए तो रावण का संपत्ति राम जी का हो गया, तो पुष्पक विमान उन्होंने कुबेर से चुरा कर लाया था युद्ध में, मतलब उसको परास्त करके छीन के लेके आए थे। तो पुष्पक विमान मतलब क्या, वो मन की इच्छा के अनुसार चलने वाला विमान, मन जो बोलेगा वो करेगा, जिसका वो विमान है उसके मन के अनुसार चलेगा वो, और उसमें कोई जैसा 320 सीट वगैरह नहीं होती। जितना चाहे उतना वो बढ़ सकता है और वो ओपन होता है, जितना चाहे करोड़ों लोग उसमें बैठ सकते हैं, जब और आएंगे तो और बढ़ सकता है वो। उसके अंदर विमान के अंदर बगीचा भी होता है, सरोवर भी होता है, फव्वारा भी होता है, झरना भी होता है, सब होता है, नदी होती है उसके अंदर, पेड़ होते हैं, सब होता है। ऐसा लगेगा नहीं कि आप ऐसे टाई योर बेल्ट्स फॉर लैंडिंग फॉर टेकिंग ऑफ, ऐसा नहीं होता है। आराम से बैठो, प्रकृति का आनंद लो, बातें करो, नाचो कूदो, खाओ पियो, सो, आराम से यात्रा करो। तो प्रभु रामचंद्र ने श्रीलंका में उस पर वो सवार हो गए, और सभी उनके जितने भी सगे संबंधी जितने भी थे सब लोगों को लिया उन्होंने, और सब वानरों को लिया उन्होंने। तो बंदरों को लिया, तो बंदरों को तो दे शुड बी हैप्पी ना, तो हैप्पी तो थे चढ़ते वक्त, लेकिन चढ़ने के बाद फिर थोड़ा दुखी हो गए। तो प्रभु ने पूछा क्या हुआ, वाई यू अनहैप्पी? तो बोलते हैं हमारी पत्नी को बोले ना, दे ऑल्सो वांट टू कम, इतना बड़ा उत्सव होगा राज्याभिषेक का अयोध्या में, हम जा रहे हैं अकेले, उनको भी आना है। तो ऐसा मैंने सुना था, मैं भी रॉन्ग, 1,70,00,000 बंदर थे, तो कम से कम एक पत्नी होगी तो कितनी बंदरियाँ होंगी। तो बोला प्रभु बोले ठीक है चलो, पुष्पक विमान एक्सपांड हो गया और फिर वो सब चढ़ गए, और वो सब को लेकर भगवान अयोध्या नगरी में उतरे। अभी हनुमान जी को चिंता थी कि वो जानते ना अपने जात भाइयों का कैसा व्यवहार होता है, तो सब लोगों को एक ही गाइडेंस दिया था, थम रूल, जो हनुमान जी करेंगे ना वही करना है आपको, उनको देखते रहना है बस, जो वो करेंगे वो करना है, तो देर बी नो डिफिकल्टी, है ना, एक स्टैंडर्ड इंस्ट्रक्शन देकर रखा था। तो सभी बंदर करोड़ों लोग जो इतने बंदरिया बंदर, वो हनुमान जी को देखते रहते थे हमेशा, जो हनुमान जी करते थे वो करते थे। तो भोजन का समय आया, पंगत लगी प्रभु जी के राज्याभिषेक की, तो सब बंदरों को एक जगह बिठाया गया, सबके सेंटर में सबको दिखाई पड़े ऐसे हनुमान जी को दिखाया गया, और उनको चने परोसे गए, चने ऐसे सबको, सब लोग वेट कर रहे हनुमान जी क्या करेंगे। तो हनुमान जी ने क्या चना दिया ऐसा, और उसको ऐसा छिलका निकालने के दबाया ऐसा, ताकि चना निकले छिलका बाहर रहे, जैसे दबाया ना तो चना आकाश में उड़ा, दबाया था साक करके उड़ गया आकाश में। तो एज अ रिफ्लेक्स, यू नो, ऐसा स्पॉन्टेनियस एक्शन, नॉट अ प्लान्ड एक्शन, हनुमान जी झप करके आकाश में उड़े, चने को पकड़ा और खाया उसने, बस इतना ही काफी था। सबको लगा कि ऐसे ही करना है, इसलिए उन्होंने किया, सबने चना लिया, उसको दबाया, आकाश में उड़ाया, सब लोग उड़ी मारने लगे। तो वही जंपिंग करने का जो बात है ना, वो इस्कॉन में आ गई, इसलिए हम लोग जंप करते हैं कीर्तन करते से। तो क्या बोलते हैं, हनुमती या कीर्तन बोलते हैं उसको। तो ये हनुमती कीर्तन जो है वो उधर उत्पन्न हो गया, अपने ही स्वतः स्वयं स्फूर्त स्पॉन्टेनियस। तो ऐसा सुंदर बात हुई, तो भगवान ने फिर बड़े हृदय से वानरों का कृतज्ञता व्यक्त की, आई एम सो ग्रेटफुल टू यू कि आपने हमारे लिए सब कुछ छोड़कर हमारी सेवा की, हमारी पत्नी को लाने में सहायता की, हम आपको अगले अवतार में भी बुलाएंगे, इसमें आपको इतना कष्ट दिया है, अगले अवतार में केवल सुख देंगे आपको। तो सारे फिर बंदर ब्रज में आए, और भगवान ने उसको, देखो कितना भगवान ऋणी है, कितने कृतज्ञ है भगवान, ये बंदर जो है ना, उनको भगवान अपने दिव्य कर कमलों से स्वयं अपने हाथ से मकान खिलाते थे, बोलो, ईच एंड एवरी वन। अपने ग्वाल वालों को भी हाथ से खिलाते थे और इनको भी हाथ से खिलाते थे। कितनी बार, अनंत बार खिलाया उनको। कितना भाग्य है देखो भगवान की सेवा करने का। और भगवान की सेवा जब करते हैं तो भगवान भूलते नहीं कभी उसको, हर हर एक कार्य का ऋण अदा करते हैं भगवान। इसलिए भगवान को देने में, भगवान को सेवा करने में संकोच नहीं करना चाहिए कि उसमें कभी किसी का नुकसान नहीं होता है। नेवर एवर, अगर आपने कुछ भी किया है, हाँ, नेहा विक्रम नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पम अप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात। स्वल्पम, इतना सा भी आपने भगवान की सेवा में किया होगा ना तो कभी आपका नुकसान तो होगा नहीं, लेकिन आपको इतना भरपेट लाभ मिलेगा उसका। भगवान उसको किसी का ऋण रखते नहीं, जो भी उनके लिए कुछ करता है तो भर भर के उसको रिस्पॉन्स देते हैं। तो उन्होंने अपना सेवा किया द्वापर त्रेता में, द्वापर में आके आनंद ही आनंद लिया। परम भगवान, परम पुरुषोत्तम, लीला पुरुषोत्तम, अखिल ब्रह्मांड नायक, गोलोकेश्वर श्री कृष्ण भगवान, हाँ, उनके हाथों से खा रहे, वो नौकर नहीं खिला रहे उनके घर से, खुद अपने हाथ से खिला रहे। तो ये वही भगवान के बंदर है, ये सब सखा है भगवान की, यहाँ पर लीला करते हैं। तो ये आशेश्वर धाम है। आशा जो है ना, आशा, इसके दो अर्थ होते हैं। एक आशा यानी डिजायर, इच्छा, ये करना है, वो करना है, ये चाहिए, वो चाहिए। और एक आशा मतलब होप, मुझे आशा है कि आप मुझे मिलोगे, ऐसे। तो दोनों तरफ से ये धाम बहुत जरूरी है, बहुत महत्वपूर्ण है दोनों तरफ से। तो संक्षेप में कथा ऐसी कि जब भगवान का जन्म हुआ तो सारे देवता, ऋषि, गण, सब लोग जितने भी थे वो सब भेष बदल कर आए। वो नंदोत्सव में, नंदोत्सव तो गोकुल मनाया गया ना पहले, नंदोत्सव जब भगवान आए तो नेक्स्ट डे तो सब लोग गोकुल में थे, तो वहाँ पर नंदोत्सव मनाया गया। तो सब देवी देवता, सब लोग ब्राह्मण ब्राह्मणी बनकर छुप छुप के आए, उसमें भगवान को गिफ्ट लेकर आए, उन्होंने भगवान को आशीर्वाद दिया और मंत्र बोले, श्लोक बोले, भोजन किया, आनंद लिया। यशोदा माई देखती रह गई कि ये तो लोग गोकुल के तो है नहीं, हाँ, बाहर के लगते हैं, लेकिन कैसे आप ही, कैसे पूछेंगे आप लोग कौन हो, आपके पास कार्ड है क्या, कौन, किसने आपको बुला। आमतौर पे जो बाहर के लोग आते हैं ना, जो किसी के पार्टी के रहते नहीं है, अगर लड़के वाले ने पूछा आप कौन हो तो बोले लड़के वाले से, और लड़के वाले ने पूछा बोले लड़की वालों से, दोनों को कन्फ्यूज कर देते हैं। ऐसे कुछ लोग आते हैं शादी में, सज धज के आ जाते हैं, भोजन करके चले जाते हैं। तो अभी यशोदा माई, इतने सारे लोग सब जगह इकट्ठा हो गए, उनमें दिखाई पड़ रहे कि बीच में कुछ लोग अनजान है हमारे लिए, लेकिन इतने सुंदर है, इतने तेजस्वी है, देवी देवता समान लग रहे हैं, तो कैसे पूछेंगे आप कौन हो। आ रहे हैं, गिफ्ट दे रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं, तो कुछ बोल नहीं पाई वो। चैतन्य महाप्रभु के जन्म के समय भी ऐसा ही माहौल था। वो योगपीठ में जब जगन्नाथ मिश्रा और सची माता जो महाप्रभु जी का उत्सव मना रहे थे, जगन्नाथ मिश्रा उत्सव, उसमें भी सची माता बहुत लोगों को देख रही थी कि ये हमारे नवद्वीप के नहीं है, ये बाहर के हैं, लेकिन वो कुछ बोल नहीं पाई। और वो उन्होंने बोलने का मौका भी नहीं दिया उनका, उसके पहले ही वो सब अदृश्य हो गए। इस तरह से सभी देवी देवता भगवान का दर्शन करने आते हैं। उसका और एक विशेष कारण भी है कि भगवान के बाल स्वरूप का दर्शन गौलोक में नहीं होता है। गौलोक में भगवान जो है वो 16 साल की उम्र में रहते हैं हमेशा, 16 वर्षीय युवक किशोर के रूप में रहते हैं। तो वहां पर तो बाल का दर्शन नहीं है, वो बालक है, गोद में है, दूध पी रहा है, रेंग रहा है, रो रहा है और घुटने चल रहा है, ऐसे कुछ नहीं है। यंग आदमी का दर्शन होता है। केवल जब वो भौम वृंदावन या अयोध्या या नवद्वीप ऐसे जगह पर जब बाल स्वरूप में दर्शन लेते हैं, जन्म लेते हैं, अवतार लेते हैं, तो उस समय उनके बाल स्वरूप का दर्शन होता है। नरसिंह भगवान तो ऐसे ही आए फुल्ली ग्रोन, तो वहां पर तो बाल स्वरूप का कोई काम नहीं है। मत्स्य भी पूरे बड़े मछली की तरह आए, कुर्मा भी ऐसे ही आए, तो वहां पर उनके बाल का दर्शन नहीं है। लेकिन राम, कृष्ण, बलराम और चैतन्य महाप्रभु, इन बाल रूप का दर्शन हुआ, तो सब देवता आते हैं। तो जब ये लौट के नंदगांव आए तो उसमें उसके बाद शिवजी आए यहाँ पर दर्शन करने के लिए। तो शिव जी आए तो वो ऋषि बनकर आए, संत बनकर आए, जटाधारी, दाढ़ी वाड़ी ऐसे। तो वो नंद भवन में गए और भगवती भिक्षाम देही, तो यशोदा माई हमेशा की तरह मोती माणिक अन्न धान लेके आई और देने लगी उनको दक्षिणा भिक्षा। तो उन्होंने कहा कि हमको ऐसी भिक्षा नहीं चाहिए, हमको भिक्षा में लाला के दर्शन चाहिए। तो तुरंत यशोदा माई के मन में टिंग कर घंटी बजी कि ऐसा क्यों बोल रहे ऋषि, जब मैं दे रहा दक्षिणा तो अलग ही कुछ मांग रहे हैं। तो इतना प्रेम है बालक के प्रति, तो उनको तुरंत संशय आया कि देखो सबसे पहले एक कन्या आई थी, बहुत सुंदर सज धज के आई थी, लक्ष्मी समान लग रही थी, एक हाथ में ऐसा कमल ऐसा ऐसे घुमाते घुमाते आई थी, वो कमलिनी के रूप में ऐसे सुंदर युवती इतना अलंकार कर पहन के आई थी। तो सबको लगा कि लक्ष्मी आई है, हमारे बालक को आशीर्वाद देने के लिए आई है, कितनी भाग्य की बात है, वैकुंठ की स्वामिनी लक्ष्मी कमलिनी हमारे कृष्ण को आशीर्वाद देने के लिए, कितनी भाग्य की बात है, सब सखियां देख रही हैं उसको। तो ऐसे एकदम स्वतः दे दिया कृष्ण को उनके हाथ में, और पता चला कि 12 मील की लंबी भयंकर राक्षस थी वो खेचरी, नवजात शिशुओं का खून पीने वाली थी वो। तो बालक औरत सुंदर औरत के इसमें फंस गए। फिर सेकंड आए, वो कभी सोचा है क्या बैलगाड़ी के रूप में कोई आ सकता है? अरे बैलगाड़ी के रूप में राक्षस आया उस पर गिरने के लिए, अद्भुत तरीके से, कोई ऐसा वो भूत था एक्चुअली, ही वॉज अ वायु रूप भूत, हाँ घोस्ट, लेकिन वायु रूप में होता, इतना भारी था कि जैसे आके वो शकट पे बैठ गया ना तो शकट जो है वो जमीन पे धस गया, वो वायु रूप था फिर भी इतना वजनदार था वो। फिर उसके बाद में हवा के रूप में आया, मतलब बवंडर, हाँ साइक्लोन के रूप में आया, तृणावर्त, कोई सोच सकता है कैसा कोई आदमी आ सकता है, तूफान के रूप में आया, कोई बैल बन के आया, कोई घोड़ा बन के आया, क्या बात चल क्या रहे है? सब योनियों का रूप लेके आ गए, कोई बगुला बन के आया, कोई सांप बनकर आया, पाइथन अजगर बन के आया, और अभी ऋषि बन के आए। ये उसके मन में चल रहा है, चलो अभी और एक अद्भुत धारण करके आए मेरे लाला को मारने के लिए, सब लोग तुम लोग कंस की ओर से आते हो, लाला को नुकसान हानि क्षति पहुंचाने के लिए आते हो, लेकिन मैं नहीं फंसने वाली, चाहो तो मती मोती और चावल धान्य ले लो, नहीं तो चले जाओ यहां से। तो कहते हम तो मोती के आशिक नहीं हैं, हम तो फकीर बाबा हैं, हम तो लाला के दर्शन करने के लिए बड़ी दूर से आए हैं, कहां से आए, कैलाश से आए हैं, लेकिन बोलते नहीं कैलाश से आकर लेकिन मैया अपने निर्णय पर निश्चित है, नहीं चाहिए मुझे, मैं नहीं, और दरवाजा उनके मुंह बंद कर देती है, तो बड़े दुखी हो जाते वो, और यहां पर आ जाते हैं। इसका नाम आशेश्वर वन है, इसमें ईश्वर शंकर जी यहां पर आ जाते हैं। भक्त जो है ना कभी भी आशा नहीं छोड़ता है, कुछ भी हो जाए जीवन में आशा ही भक्त का जीवन है। कुछ संकट आते हैं, दुख आते हैं, टूट जाता है वो कभी, फिर खड़ा होता है, फिर टूट जाता है, फिर और संकट आते हैं, फिर कभी विश्वास भी नहीं होता है कि क्या हो रहा है, ऐसे अद्भुत, जैसे कि किसको पता था कि वो बैलगाड़ी के रूप में राक्षस आएगा, ऐसे ही वृंदावन का जीवन भी ऐसा है, भक्त का जीवन भी ऐसा है, क्या कब होगा कुछ समझ में नहीं आता है कि बवंडर के रूप में राक्षस कैसे आ सकता है, हाउ कैन इट पॉसिबल, लेकिन सब होता है, यहाँ पर भगवान अद्भुत बातें करते हैं। लेकिन आशा एक ऐसी चीज है कि इतना सब होने पर भी भक्त जो है ना वो टिका रहता है अपने मार्ग पर, वो हिलता नहीं है, मार्ग भ्रष्ट नहीं होता है वो। तो उन्होंने छोड़ने दिया, अभी क्या करें, हार गए, अभी चलो वापस चलते हैं कैलाश, ऐसा नहीं, यहाँ पे आके बैठ गए और यहाँ पर रोने लगे बैठकर, वो रो रो के पुकारने लगे। भक्ति में भगवान को पुकारते समय कैसे रोना है, ये उन्होंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल खड़ा किया है। इतना बैठकर रोए वो कि भगवान, जो भगवान बालक रूप में है, बालक रूप में तो क्या हुआ, भगवान तो भगवान ही होते हैं, उनके हृदय में ऐसे गलबलाहट हो गई कि मेरा भक्त मेरे दर्शन के लिए आया है और रो रहा है, और मेरी मैया ने तो उसको ठुकरा दिया है, मैया के हाथ में सुपुर्द हूँ पूरा, आई एम सरेंडर टू इन हर लैप, तो मालिक है, लेकिन बालक रूप में आए, माता की गोद में समर्पित है, फिर भी मालिक तो वही रहते हैं हमेशा, बालक के हाथ में कौन सा अस्त्र होता है बताओ, उसके पास कुछ नहीं है, कुछ भी कर सकता नहीं, वो सब टट्टी पेशाब बिस्तर पे करता है, गोद में करता है, भूख लगी तो उसको किसी को खिलाना पड़ता है, दूध पिलाना पड़ता है। लेकिन उसके हाथ में एक ऐसा अस्त्र है जो अस्त्र निकालने के बाद में बड़े बड़े भी हिल जाते हैं पूरे। तो कृष्ण भगवान ने अपना अस्त्र निकाला, कौन सा अस्त्र था वो? रोना शुरू कर दिया। तो हमेशा की तरह स्तनपान करने को लगाया तो स्तन छोड़ दिया, फिर खिलौना दिया तो खिलौना फेंक दिया, तो बड़ा खिलौना दिया बड़ा खिलौना फेंक, लास्ट टाइम ये लेने के बाद में रुका था तो वो फेंक दिया। जो भी प्रयास किया सब विफल हो गए। अभी क्या करें? अभी देखो जैसे बालक रोने लगता है तो बड़े बड़े माता पिता भी परेशान हो जाते हैं। जब हमारी अनुराधा छोटी सी थी ना ऋषिकेश में, तो मैं डॉक्टर हूँ, तो वो जो रोती थी ना तो डॉक्टर वॉक्टर क्या सब खत्म, दिमाग एम्प्टी कम्प्लीटली, कुछ समझ में आता नहीं था क्यों रो रही है ये। वो ऋषिकेश जैसे देहात में क्या समझ में, रात को रो रही है, दिन में रो रही है, पेट दुख रहा है कि क्या हो रहा है, आपको सर दुख हो रहा है। दूसरी बेटी हमारी रोती तो अभी आज भी समझ में आता क्यों रो रही है। तो जब बालक रोता है ना तो बड़े बड़े विद्वान भी पागल से जैसे हो जाते हैं, क्या करें समझ में नहीं आता है। तो वैसे यशोदा की अवस्था हो गई, क्या करूं क्या करूं, बालक रो रहा है, कन्हैया रो रहा है। तो सब सखियां एकत्र हो गई, प्रभावती आ गई, ताऊ चुंगी जी आ गई, सब लोग आ गए, बोले बालक रो रहा है क्या करें। तो उतने में वहां पर पूर्णमासी आई, यहां से आप नंदगांव आए ना ऐसे बरसाने से, उसके बीच रास्ते में राइट साइड में पूर्णमासी का आश्रम है, उसका नाम है पूर्णमासी प्रोहितानी का आश्रम। सांदीपनी उनके पुत्र हैं और मधुमंगल और नंदीमुखी उनके लड़का पोता पोती हैं, मधुमंगल लड़का और नंदीमुखी लड़की। नंदीमुखी राधा रानी की बड़ी प्रिय सखी है और मधुमंगल कृष्ण के बड़े प्रिय सखा है, हरि बोल। तो वो आ गई और वो पार्वती जी का अवतार है और वो गुरु भी है गुप्त गोपियों की, यशोदा की भी गुरु हैं वो। तो वो आ गई, वो देख रही सब लोग रो रहे हैं, भगवान रो रहे हैं। तो उन्होंने कहा अरे मेरा ऐसा विश्वास है कि वो जो बाबा आए थे ना बड़े सिद्ध बाबा थे वो, क्योंकि उनके पति है ना वो, उनको भी चांस लेना है कि मेरे पति का काम भी करना है, मैं क्या करूँ, मैं भी यहाँ पर असहाय हूँ, हमारे स्वामी जी ने दरवाज़ा ठोक दिया तो मैं क्या कर सकती हूँ। तो वो वेट कर रही थी, जब बालक ने रोना शुरू किया तो वो आके बोली यशोदा तुमने जिसको ठुकराया जिसको मना कर दिया वो बड़े सिद्ध बाबा हैं, बड़े दूर से आए वो, उनको बुला लो, उनके आशीर्वाद से रोना बंद करेगा ये। तो सखियों को भेजा उनको बुलाने के लिए। अभी देखो कितना विरोधाभास है, उसी माता ने बालक की सुरक्षा के वजह से उसी के ऊपर मुंह दरवाजा बंद कर दिया और वही माता सखियों को भी सम्मान से उसको बुलाने के लिए भेज रही है। वैसा नहीं बोल रही नहीं मैं नहीं उनको बुलाऊंगी, मैं तो उनको अपमान करके भेज दिया है, मैं नहीं बुला सकती उनको, और किसी का नाम बताओ। वो हमारे शहर का लोग ऐसे सोचते हैं, लेकिन भगवान के प्रेम में जो रथ है उनको कोई मान सम्मान नहीं होता है, कोई ऐसा ईगो नहीं होता है, उनको कोई संकोच नहीं होता है, ठाकुर जी के लिए कुछ भी करने को तैयार है, एकदम विरुद्ध एक्टिविटी करने को तैयार है, का एक को भी दरवाजा ठोक के भगा दिया तो उसी को सम्मान के साथ बुला रहे हैं, कोई संकोच नहीं उनको। तो इधर आए और बुलाया कि मैया बुला रही है, तो हमारे महादेव जी भागे यहाँ से और वहाँ गए तो मैया ने लाला को हाथ में लिया और दरवाजा खोला और उनके पास गई वो, तो शंकर जी ने उनके चरण जो है दो चरण कमल नन्हे नन्हे से कोमल कोमल मुलायम मक्खन जैसे अपने गोद में लिए, वो प्रणाम किया उसको। जैसे ही प्रणाम किया बालक का रोना बंद, एकदम मुस्कुराहट, है ना, हमारा नुस्खा चल गया जो हमने किया वो सफल हो गया। तो शिव जी ने भगवान की कृपा, उसके बाद मैया क्या बोलती है, जिसके ऊपर दरवाजा का बंद किया था मुंह पे, उसको क्या बोलती है कि जब जब लाला रोए तब तक दर्शन दीजो। अभी तुम खिलौना बन गए उसके, लाला के खिलौना बन गए तुम, तुमको देख के लाला रोना बंद कर दिया, तो अभी इसके आगे जब जब रोएगा ना तो इधर ही रहना और तब तक बुलाया करूंगी आपको, तब तक आके उसको दर्शन देना और शांत कर देना। और वादा भी करती है कि अब मेरे पास ही रहना और इनको जो जो भोग लगाऊंगी पहला भोग आपको दूंगी प्रसाद के रूप में। तो नंदीश्वर महादेव के रूप में वहां विराजमान है वो, और यहाँ आशीश्वर महादेव का स्थान है, ये तपस्थली है उनकी। तो एक तो सारी आशाएं जो है ना वो हमको छोड़ देना चाहिए, एक ही आशा अन्या बिलासिता शून्यम ऐसा हमको रहना चाहिए, तब भगवान भी हमारे बारे में सोचते हैं, हम केवल उनके बारे में सोचते हैं तो हमारे बारे में सोचते हैं, हम किसी और के बारे में सोचते हैं तो वो भी किसी और की सोचते हैं। क्या बोलते हैं, तू मेरे नाम में तो मैं तेरे काम में, तू अपने काम में तो मैं मेरे धाम में, मतलब अगर तू अपने काम में बिजी है तो मैं भी बिजी हूँ, लेकिन अगर तू मेरे नाम में बिजी है तो मैं तेरे काम में बिजी हूँ, काम यानी तेरे कल्याण के काम में बिजी हूँ, तेरे परिपूर्णता के काम में बिजी हूँ।
जय हो महाराज जी, जय हो महाराज जी,
जय श्री राधे, धन्यवाद। तो सारी आशाएं जो है ना, वो कैसे आशा करनी चाहिए आदमी को, वो यहाँ पर शंकर जी ने दिखाया है। ऐसा रोना चाहिए, ऐसे इसलिए मैं बार बार क्यों बोलता हूँ, पुकारो, क्योंकि हम लोग क्या है, आते हमारा मन यहाँ वहाँ भटक जाता है, यहाँ देख रहे कुछ देख रहे, फोटो निकाल रहे, लेकिन पुकारने से ठाकुर जी सुनते हैं और फिर उनका ध्यान हमारी ओर आकर्षित होता है। हमारे पुकारने में कैसे कशिश है, जब बालक रोता है तो कई प्रकार से रोता है, वो एक रोता है तो दूध पिला तो शांत हो जाता है, एक बार रोता है तो कुछ खिलौना तो शांत हो जाता है, लेकिन एक बार ऐसा रोता है कि दूध खिलौना कुछ नहीं सुनता है, तो फिर माँ खो के गोद में बैठ जाती है तो फिर वो शांत हो जाता है। तो माँ तब तक अपने आप को उसको अर्पण नहीं करती जब तक वो बाकी चीज़ों से संतुष्ट हो जाता है। तो ऐसे हम रोते हैं तो भगवान पैसा देते, लो हम चुप हो जाते हैं, आनंद लेते हैं उसके बाद में, फिर हमको भगवान भोग देते हैं, फिर ये देते हैं, वो देते हैं, रिश्ते देते हैं, नाते देते हैं, हम लोग उसे मस्त रहते हैं, उनको भूल जाते हैं, लेकिन सब कुछ देते हैं हम, नहीं 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 केवल आप चाहिए हमको, फिर वो फिर खुद को आकर अर्पण कर देते हैं। वो सब देंगे आपको, पैसा देंगे, नाम देंगे, इज्जत देंगे, पोजीशन देंगे, सौंदर्य देंगे, ज्ञान देंगे, हाँ जिस पर आपको गर्व होता है सब चीज़ें आपको देंगे, वो खुद को नहीं देंगे। तब तक वेट करेंगे जब तक आपको अन्या बिलाशिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम, जैसे आप तब बनोगे ना तब फिर वो खिलौने फेंकना बंद करेंगे, जब तक खिलौने में हम रीझेंगे तो और खिलौने भेजते रहेंगे आपके लिए, लेकिन जब खिलौने हम फेंक देंगे तो खुद आ जाएंगे। यहाँ पर ऐसे रोए हैं, इनका रोना देखकर वो भी रोने लगे वहाँ पर, इनके रोने का पर्पस इनका ध्यान आकर्षित करने का था, उनका रोने का पर्पस जो है इनके रोने का इलाज करने का था। इस तरह से इन्होंने आशा नहीं छोड़ी, यानी दूसरी आशा होप कि दर्शन नहीं होगा अभी क्या करेंगे। भक्त जो कभी निराश नहीं होता है, अपने प्रयास में लगा रहता है हमेशा, चाहे यश मिले अपयश मिले, धक्का लगे ठोकर लगे, टूट जाएं हम लोग, गिर जाएं, फिर भी भक्त जो है उसको श्रद्धा होती है भगवान पर कि जो भी हो रहा है मुझे लग रहा है कि ठोकर मिल रही है, मैं टूट रहा हूँ, मुझे भगवान तोड़ रहे हैं, ऐसा आपको लगेगा, लेकिन भक्त सोचता है कि इसमें भी कुछ भगवान की योजना है, भगवान कुछ भी काम बिना प्रेम से, बिना करुणा से, बिना दया से नहीं करते हैं, और हर एक के लिए उनकी विशेष योजना है, स्पेशल कस्टमाइज प्लान है सबके लिए। डॉक्टर कैसे हर एक मरीज को स्पेशल दवा देता है, जो उसको जो बीमारी है उसको दवा देता है, उस प्रकार से देता है, उस प्रकार भगवान भी हमारी जैसी स्थिति है वैसे हमको दवा देते हैं, और कुछ दवा कड़वी लगती है, कुछ दवा मीठी लगती है, कुछ दवा अच्छी लगती है, कुछ दवा नहीं अच्छी लगती है, कुछ दवा पसंद आती है, कुछ दवा पसंद नहीं आती है, कुछ दवा उल्टी करने का दिल करता है, लेकिन हर दवा हमारे मन को ठीक करने के लिए होती है, होती है कि नहीं होती है। केवल डॉक्टर को आप पर खुन्नस से इसलिए दवा देता नहीं हो, ये मरीज है ना इसको मैं ऐसा इंजेक्शन मारूंगा ना 8 दिन दुखना चाहिए, ऐसा नहीं होता है। वो जो इंजेक्शन देता है या दवा देता है या कुछ गोली देता है जो भी होता है, वो आपके बीमारी को ठीक करने के लिए ही देता है वो। उसी प्रकार से भगवान भी हमारे लिए जो भी करते हैं, हमको लगता है बहुत कड़वा लगता है, कष्ट लग होता है हमको, हम टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं, लेकिन वो कभी भी हमारे बुरे के लिए कुछ करते नहीं। समझना मुश्किल है कि कैसे हमारे लिए अच्छा है, वो कालांतर में समझ में आएगा, थोड़ी देर के बाद में समझ में आएगा कि कैसा हमारे लिए अच्छा था, लेकिन जब तक वो समझ में नहीं आएगा तब तक श्रद्धा रखना ये भक्त के भक्त होने का लक्षण है। जब समझ में नहीं आ रहा उसको ये मेरे लिए कैसा अच्छा है, फिर भी श्रद्धा के आधार पर समझ रहा है कि ये अच्छा है, और फिर भी आशा रखता है कि ये भी समय टलेगा और भगवान कृपा करेंगे, एक दिन मिलेंगे, तो इनका रोने का क्या है, उन्होंने छोड़ नहीं दिया, उसकी डिडंट गिव अप, बैठे और प्रयास करते रहे, और आखिर भगवान का ध्यान आकर्षित करके ही बैठे वो, भगवान ने यशोदा माई को मजबूर कर दिया और फिर दर्शन दे दिया उनको। बहुत सीख है इसके अंदर, शिक्षा बहुत है इसके अंदर, तो आप लोग भी आशा कीजिए कि हम भी ऐसा रोना सीखें। हाँ सुबह से रोने की कथा कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, सुबह शुरुआत किया था रोने से, सब रोने की कथा ही चल रही, लेकिन ये रोना साधारण रोना नहीं है, ये भगवान के लिए रोना है। ये रोने से हृदय शुद्ध हो जाता है, अविद्या नष्ट हो जाती है, भ्रम नष्ट हो जाता है, इस अश्रुओं से सारे पाप धुल जाते हैं। बाकी रोने से पाप बढ़ जाते हैं, ऐसा आसक्ति और मोह बढ़ जाता है। ये रोने से सारे कलमश नष्ट हो जाते हैं, हृदय पवित्र हो जाता है, भगवान को स्वीकार करने के लिए योग्य बन जाता है। तो शिवजी महाराज ने यहाँ पर आदर्श उदाहरण खड़ा किया है। शिवजी हमारे बहुत दयालु हैं, बहुत ज़्यादा दयालु हैं। उनकी कितनी लीलाएँ हैं भगवान के संबंध में, हर जगह भगवान के विषय में इतना उच्च भाव प्रकट करते हैं वो, हर जगह शिक्षा देते हैं। देखो वहाँ पर वृंदावन में देखो, भाग के आए थे वो रास का दर्शन करने के लिए, है ना। इतने भावुक हो गए थे कि सोच नहीं रहे कि मेरी पत्नी क्या बोलेगी, मेरे गण क्या बोलेंगे, मेरे क्या बोलेंगे, कुछ नहीं। भागे तो उनको रोका गया, अरे ये कहाँ जा रहे हो, बोले नहीं दर्शन करना है। नहीं नहीं, यहाँ पर केवल एक ही पुरुष है, बाकी सब स्त्रियाँ हैं। अच्छा तो क्या करना होगा, स्त्री बनना होगा। अच्छा कैसे बनना होगा बताओ, तुरंत बताओ। अभी हमको अगर बताएंगे स्त्री बनना है तो बोलेंगे थोड़ा सोचता हूँ जरा मैं। ऐसा नहीं है, इंस्टेंट रेडीनेस। तो बोले जाओ मानसरोवर में जाके स्नान करो, तुरंत भागे, छलांग लगा के डुबकी लगाया तो गोपी शरीर गोपी भाव प्राप्त हो गया और तुरंत वहां से भाग के आए। फिर रोका उन्होंने ललिता ने, और केवल रोका ही नहीं, ठहाका मार के सब गोपियां मुंह में हाथ रख करके जोर जोर से हंस रही है। अभी क्यों हंस रही, अरे वरदान जो था मानसरोवर में स्नान करके गोपी बनने का वो शिवजी को था, सांपों को नहीं था। सांप तो ऐसे रह गए। अब सुनो, कोई सुंदर औरत बहुत श्रृंगार करके अगर सर पे एक सांप, एक गले में, एक कंधे में, हाथ में ऐसे लेके आएंगी तो आपको क्या लगेगा, क्या है ये। तो वो बड़ी इतनी सुंदर गोपी बनकर आए और सारे सांप तो वैसे के वैसे रह गए, उन्होंने स्नान किया लेकिन वो वैसे रह गए। तो अल्टीमेटली क्या बताया शुरुआत से मैंने ये कैंप में, ये भाव की बात है। जिसका भाव योग्य है उसका परिवर्तन है, जिसका भाव वैसा ही है तो वैसा ही रहेगा वो, जिसका भाव भगवान के लिए अनुकूल है उसका परिवर्तन होगा। तो शिवजी का भाव वो उत्सुकता में था, लौल्यम, हाँ उत्सुक थे भगवान का दर्शन करने के लिए, इसलिए वो गोपी बन गए, वो सांप गोपी नहीं बने। तो इनका 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 भाव देखकर हंस रहे हैं लेकिन वो अप्रिशिएट भी कर रहे हैं कि कैसा भाव है इनका, देखो हाउ नाइस। तो ललिता देवी ने अपने हाथ से इनका श्रृंगार किया है और गोपी बनाया, सजाया धजाया श्रृंगार किया उनका, और हाथ पकड़ के उनको ले गए रसमंडल के अंदर, जहां पर रत्न सिंहासन पर जुगल जोड़ी बैठी हुई है वहां पर हाथ में चमर दिया और चमर सेवा कर्मण करवाने को बिठाया। बड़े प्रेम से उन्होंने चमर सेवा किया ठाकुर जी का, फिर वापस हाथ पकड़ के रसमंडल के बाहर लेके आए वो बंसी भट्ट के पास। बोले अभी यहीं बैठो और रसमंडल का दर्शन करो और इसकी रक्षा भी करो। इस तरह से शिव जी ने वहीं पर स्थान ले लिया अपना, गोपेश्वर महादेव। कितना समर्पण है उनके अंदर, कोई ऐसा ईगो नहीं है कि मैं महादेव हूँ, अरे मेरी पत्नी क्या बोलेगी अगर मैं गोपी बन जाऊँगा तो, वो क्या ताने मारेगी, छोड़ देगी मुझे क्या। भाव इतना श्रेष्ठ है, पत्नी भी वैसी है, अरे खुद आके श्रृंगार करती है उनका, मैं सिखाती हूँ आपको श्रृंगार कैसे करना है, जाओ जाओ अभी आके पुकारो श्री जी को। ऐसी जोड़ी होनी चाहिए पति और पत्नी की, है ना, दोनों भगवान के समर्पित, कोई दोनों को अपना खुद का एजेंडा नहीं है, दोनों के बीच में भगवान है, जीवन पूरा उनके लिए समर्पित है, ऐसा गृहस्थी होना चाहिए। ऐसी गृहस्थी संन्यास वृत्ति से कम नहीं है, कोई डिफरेंस नहीं। ऐसी अगर वृत्ति होती है गृहस्थों के अंदर तो वो गृहस्थ आश्रम संन्यास आश्रम के बराबर है, इसमें सब कुछ समर्पण। संन्यास में क्या होता है, सब कुछ भगवान के लिए समर्पित होता है। तो गृहस्थी में अगर ऐसा ही है तो गृहस्थी भी संन्यास आश्रम की तरह ही है, कोई कमी नहीं है। जो सन्यासी को प्राप्त होगा वही गृहस्थ को प्राप्त होगा, अगर ऐसी गृहस्थी हमारी है तो ये आदर्श गृहस्थी है। कितने फकीर बाबा है वो। एक बार क्या हुआ, एक बार बताया ना मैंने, त्रैमासिक व्रत किया पार्वती जी ने और शिव जी ने मिलकर, तो राधा कृष्ण भगवान ने दर्शन दिया उनको, ब्रज के निवास का आशीर्वाद दिया, रहो ब्रज में हमारे रहो। तो इन्होंने भंडारा किया, सबको बुलाया भंडारे के लिए, सब लोग आए भंडारे के लिए। और शिव जी ने क्या किया, विवाह किया। जब विवाह किया ना तो बहुत दक्ष जी थे ना, उनके ससुर जी बहुत ताने देते थे, क्या है फकीर बाबा जमाई, तो स्टेटस के बहुत नीचे हो गया हमारा, हम तो प्रजापति है तो फकीर बाबा हमारी लड़की उस पर प्रेम में आई क्या करें। 10 कन्याओं को तो ऋषि मुनि को दे दिया और ये नहीं मानते तो शिव जी के साथ शादी किया। तो शिव जी ने फिर एक बार महल बनाया बड़ा बहुत, ऐसा नहीं कि वो फकीर है, फकीर तो इच्छा से फकीर है वो, लेकिन कर बहुत सकते हैं कुछ। हवा महल बनाया, हवा के अंदर ऐसा महल बनाया, हजारों कमरे उसके अंदर, कमरे के अंदर फिर उसमें फव्वारा, उसमें जल जल महल, उसके अंदर सरोवर, नदियां, ऐसा सुंदर बनाया। तो पार्वती ने कहा भी ग्रह बनाया तो ग्रह में अतिथि होने चाहिए, तो उन्हें भंडारा बना दिया उसके अंदर, सबको, सप्तऋषियों को सबको बुलाया, सबको भोजन कराया, अन्नपूर्णा जी है उसमें क्या कमी है, सबको हलवा पूड़ी खिलाया, बहुत बढ़िया से माल खिलाया, पकवान, सब संतुष्ट हो गए। फिर बाद में लास्ट में क्या होता है, दक्षिणा, केवल भोजन नहीं कराते, एक रुपया, दो रुपया, दस रुपया, पंद्रह रुपया जो भी है दक्षिणा देनी चाहिए। तो दक्षिणा देने के लिए बैठ गए, सब लोग आए लाइन से, एक एक मांग रहे, कुछ दे रहे हैं, मांग रहे दे रहे। एक आया बोला आपका हवा मेल दे दो, दे दिया उन्होंने। फिर जाके बैठ गए पेड़ के नीचे भोजन करने के लिए। देखो ऐसा विरक्ति होना चाहिए। हवा मेल बनाया, उससे आसक्त नहीं हुए, क्या करना है, उस सब भगवान का दिया हुआ शक्ति है, उससे बना दिया उसको, उसमें क्या है, भगवान थोड़ी उसके अंदर, भगवान तो हृदय में है, उनके लिए भजना है, महल हो या ना हो भगवान हमारे होने चाहिए। शिव जी कैसे अनंत उदाहरण है, यहां पर उन्होंने अनन्य भक्ति का प्रदर्शन किया है, इसलिए उसको वैष्णव मानान यथा शंभू कहा गया है। उनका उदाहरण हर जगह हर समय प्रेरणादायक है। तो हमें शिव जी को प्रार्थना करना चाहिए कि वो आशा हमको दे जो आपने हृदय में बना के रखी थी। इसके लिए आपका नाम आशेश्वर महादेव हो गया है। ऐसी प्रार्थना शिव जी से कीजिए तो शिव जी भी आपको वो भावना देंगे जिससे आप भी रो सकते हो, भगवान के लिए रो सकते हो, भगवान आपके रोने से आकर्षित हो सकते हैं, नित्यानंद प्रभु आपके रोने से आकर्षित हो सकते हैं। लेकिन प्रार्थना करनी चाहिए, जो हमारे बस की बात नहीं है उसके लिए प्रार्थना करना चाहिए। जिस जगह पर हम असहाय हो जाते हैं तो प्रार्थना का आश्रय निकालना चाहिए। प्रार्थना ऐसी शक्ति है, कमजोर से कमजोर व्यक्ति भी भक्ति में बहुत प्रगति कर सकता है प्रार्थना के बल से। तो प्रार्थना कभी करने को चुकना नहीं चाहिए। हमारे नवदा भक्ति में एक विधि है वंदनम, तो आप प्रार्थना कीजिए उनसे, कृपा याचना कीजिए, आशेश्वर महादेव आप पर कृपा करेंगे और आपका हृदय और चेतना उनके ध्यान में एकाग्र होने के लिए आपको मदद करेंगे। आशेश्वर कुंड इसका आचमन कीजिए, गंभीरता से प्रार्थना कीजिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।